نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تیسرے پارے کا آغاز کریں گے. ہمارے اس پورے پارے میں ہم سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ دیکھیں گے. اس پارے میں لفظ امم یعنی امت کے لفظ کا جو روٹ ہے اس سے جو پہلی آیت ہے وہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ کے الفاظ استعمال کیے. یعنی یہاں ام کا معنی روٹ یعنی ماں یا اصل کے لیے آیا ہے. اور حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں آیات مختلف قسم کی ہیں, جس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں کہ جس پہ غور و فکر کرنا اور عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے, ان کو ام الکتاب کہا جاتا ہے. تو ہم یہاں یہ دعا کریں گے کہ ہم قرآن پاک کی وہ آیات جس پہ ہمارے عمل کی بات ہے ضرور غور و فکر کریں. پھر دوسری آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلِّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ, اے نبی کہہ دیجئے اہل کتاب یعنی یہود مدینہ سے, والامیین یعنی مشرکین مکہ سے, کیا أَسْلَمْتُمْ کیا تم مسلمان ہوتے ہو, فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر وہ مسلمان ہو جائیں گے تو ہدایت پائیں گے. اس آیت کا جو تھیم ہے ہمارے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر جتنے بھی مختلف گروہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی, اور اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو ان کے لیے خیر اور عافیت کی باتیں تھیں. تو ہمارے لیے بھی یہی عمل ہے کہ جہاں تک ہم پہنچ سکیں وہاں تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے. پھر اس کے بعد آگے جا کے دیکھیں تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 75 ہے, جس میں یہود کا ایک قول ہے ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. یہود کہتے تھے کہ دوسروں کا مال لے لینا ہمارے لیے کوئی برا نہیں ہے, کیونکہ وہ مشرکین مکہ کے مال کو اپنا مال کہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تنقید کی ہے. اس کے بعد اس پارے کے اندر شروع کا حصہ جب ہم پڑھنے والے ہیں اس کو تھوڑا سا آپ کے سامنے بریف کر دوں, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے کہ لوگ اللہ کی حد تک تو بات مان لیتے ہیں, لیکن جہاں بات انبیاء کرام کی آتی ہے تو پھر فرقوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے وقت کے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے دوسرے نبی کی کردار کشی کرتے ہیں. جو کام کل لوگ نبیوں کے ساتھ کرتے تھے آج وہی کام لوگوں نے آئمہ کرام اور دین کے خدمت گاروں کے ساتھ کرنا چاہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اجتماعی اصول سکھاتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے تھے. اب کیا ہے, یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے دیے. یہاں درجوں کی بات ہے, اس کو نوٹ کیجئے. اللہ کی اس دنیا میں ویرائٹی بہت ہے, ایک تو چیزیں بہت ہیں پھر ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ بہت زیادہ ملی ہوئی ہے. بس اگر ایک آم بھی آپ خریدتے ہیں تو آموں کی کئی قسمیں ہوں گی, سبزی لیں گے تو کوئی اچھی قسم کی کوئی کم اچھی قسم کی ہوگی, فروٹ کی مختلف قسمیں. اسی طرح انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف خوبیاں دی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, دوسروں کی خوبی کو سامنے رکھ کر کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں. کرنے کا کام کیا ہے کہ دوسروں میں اگر کوئی خوبی دیکھیں, اگر آپ میں وہ نہیں ہے تو آپ پیدا بھی وہ نہیں کر سکتے, تو اپنی کوئی خوبی ڈھونڈیے اور اس کو لے کر چل پڑیں. لوگ جب دوسروں کی خوبیوں کو سامنے رکھتے ہیں تو بعض دفعہ پھر وہ شخصیت پرستی میں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح اپنے آپ کو خرابیوں میں پیدا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے خود کلام کیا, کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے, اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور انہیں پاک سے ان کی مدد کی. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے, مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبرن اختلاف سے روکے, اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا, پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے, مگر اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ تو تھی تمہید, پارے کے اندر نبیوں کا تذکرہ ہے. اب یہاں سے آیت 254 پہلی دفعہ باضابطہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کی دعوت دی جا رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو کچھ مال و متاع ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی, اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. یہ کس دن کی بات ہے؟ قیامت کی بات ہے. دنیا میں کوئی چیک ملتا ہے نا تو اس کی ایک ڈیٹ ہوتی ہے, जब वो डेट एक्सपायर हो जाती है तो वो एक कागज का टुकड़ा रहता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है, याद रखिए रिस्क का ताल्लुक सिर्फ नोटों और से नहीं, जो भी माल दिया ना वो सिर्फ मनी मैटर्स या पैसे की सूरत में नहीं है, अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, पहले तो इस जुमले को नोट कीजिए, मिम्मा रज़क़नाकुम, क्या ये वैसे ही जुमला नहीं है? आप अपने बच्चे से क्या कहें, बेटा कैंडी देना, तो एकदम कंधे उचकाएगा, मैं नहीं देता, उसको लगेगा शायद मम्मी उसकी कोई चीज मांग रही है। और अगर इसके बरक्स आपके बेटा, वो जो कैंडी मैंने आपको दी थी उसमें से एक मुझे दे, फर्क होगा ना। जो कुछ इस वक्त मेरे पास है, 3 सेकंड तक सोचें, अल्लाह ने मुझे क्या दिया है? मेरे लिए 3 सेकंड तो छोड़ दीजिए, हमें 3 महीने चाहिए गिनने के लिए जो कुछ दिया है अल्लाह ने, हमें इतना दिया है माशाल्लाह। अगर कोई हमसे कहे कि अपने घर की, अपनी बिलोंगिंग की लिस्ट बनाओ, एक एक चीज, कुर्सी, मेज, चम्मच, प्लेट से लेकर सोना चांदी, कपड़े, जेवर, प्रॉपर्टी देखें, तो क्या नहीं दिया। मैं अक्सर सोचती हूँ कि एक इनकलाब जो दुनिया में आया मक्का और मदीना से, वो लोगों के पास तो इतना भी नहीं था कि जितना शायद आज हमारे क्लोजेट्स में भरा हुआ है, ऐसे ही है ना। लेकिन आज के मुसलमानों के पास तो इतना कुछ है कि जमीन तो छोड़िए, वो तो चांद पे भी अल्लाह का पैगाम पहुंचा दें। लेकिन फर्क किस चीज का है? खर्च का फर्क है। तो ये सोच आज दिल से निकाल दें कि मुसलमानों के पास माल नहीं है। हाँ, ये सोच दे दी गई कि मुसलमान बेचारा, मुसलमान गरीब, मुसलमान मिस्कीन, मुसलमान डिसऑर्गेनाइज। सूरह मायदा में हम पढ़ेंगे इसको कि कैसे आज परसेप्शन चेंज किए गए मुसलमानों के। तो पहली बात है, अपना मोरल बुलंद कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम खाते पीते लोग हैं, हम भूखे लोग नहीं है, चंदा मांगने वाले लोग नहीं है, हमें बिल्कुल लोगों की पैनियों की जरूरत नहीं है। आज कुछ लोगों ने दीन को इतना लट डाउन करके पेश किया कि लोगों को पहले मेंबर पे आके चंदे की बात करते हैं फिर खुतबा शुरू करते हैं, ये गलत तरीका कार था। इस्लाम के पास बहुत कुछ है, सिर्फ शर्त इस बात की है, जरूरत इस बात की है, ये दिन याद रखें कि ये चंद दिन की मेरे पास चीजें ये खत्म होगी। चलिए मैं इस पे एक छोटी सी एक्टिविटी अपने से भी और आपसे भी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ अल्लाह ने कहा ना कि खर्च कर लो इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन ये काम नहीं होगा। आपके पास $20 का नोट है, होता है $20 का नोट? एक ऐलान लगता है गवर्नमेंट की तरफ से कि 15 दिन के बाद ये $20 का नोट खत्म हो रहा है, इसके दौरान आप इसको यूज कर लें, चेंज कर लें, इट्स ओके, 15 दिन के बाद आप लाएंगे तो ये कागज का एक टुकड़ा है। हम क्या करेंगे? कोनों से, खुदरों से, वो जो शोहर से छुपा के अखबारों के नीचे रखे हुए और जो गद्दों में छुपाए हुए, सब निकालेंगे, मियाँ को बताएंगे भी नहीं, और निकाल निकाल के फिर उनको कि किसी के जरा बदला दें। वैसे तो यहाँ औरतें खुद ही बड़ी इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम बदल लेंगे ना, वैलिड करना है क्योंकि साया होगा। अब आप सोचिए, मैं और आप, जो कुछ मेरे पास है, और अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा ये वैलिड कब तक है? जब तक तुम्हारे सांस में सांस है। हदीस में आता है, यकूल उल अब्दू माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, हालांकि उसके माल में 3 चीजें हैं उसकी, जो खा लिया फना हो गया, जो खाते हैं वो कहाँ जाता है, सबको अपने रेस्टरूम याद है, जो पहनते हैं वो चीथड़े बन जाते हैं, और जो अपने हाथ से आगे भेज देते हैं वो किधर है? असल माल वो है, कहा जो पीछे है वो वरसा का है। तो अल्लाह ताला इस बारे के अंदर शुरू में हमें माल की तकसीम सिखा रहा है कि देखो खुद भी खाओ दूसरों को भी दो। कुछ लोग ना खुद खुश रहते हैं ना किसी दूसरे को खुश रखते हैं। ज्यादा जरूरत इस बात की हुई कि हम अपने आप को इन चीजों में डालें कि जो अल्लाह ताला की चीजें हैं उसको सॉर्ट आउट करें, एक लिस्ट तो बनाकर देखें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ दिया, फिर आप देखेंगे कि उसके बाद इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें खुद बहुत सॉर्ट आउट होंगी। किसी ने एक छोटी सी कोटेशन भेजी थी, वही ढूंढ रही हूँ, अगर मिल गई, बड़ी अच्छी सी थी, पहले तो मुझे समझ नहीं आई, ऐसे मैंने सरसरी सी देखी, लेकिन उसमें यही मफहूम था कि जो भी हम जिक्र कर रहे हैं कि जो रह गया वो जाया हो गया और जो चला गया वो आगे जाके काम आएगा। अगर मिल गई चीज तो आपको सुना दूंगी, वैसे वक्त पर अक्सर मुझे मिलती कोई नहीं है, लेकिन हकीकत है कि आज हम दुनिया में जो कुछ भी सोचते हैं वो जरूरी नहीं कि वैसे ही हो जिस तरह के हम अपने लिए उसको चाहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इससे पहले कि हमारी चीजें जाया हों, हम इसको अल्लाह ताला के बैंक में जमा करवाएं, और वो बैंक में जमा कराने का मतलब डोनेशन नहीं है। बहुत सारे लोगों के जहनों में आज एक सवाल होता है, अच्छा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, किसी मस्जिद को दे दें, मदरसों को दे दें, ये जो दीन सिखा रहे हैं उनको दे दें। ये तरीका नहीं है पूरा, ये तब होगा जब उनको जरूरत होगी, आप खुद अल्लाह के रास्तों में लगाएं। मुसलमानों को अल्लाह ताला ने इतना टैलेंट दिया, स्किल्स दिए, हर वक्त सोचें मेरे फलां बच्चे के पास क्या टैलेंट है, अच्छा उसको मैं अल्लाह के रास्ते में लगाती हूँ, अच्छा मेरे बेटे की क्या खूबी है, अच्छा मेरे इस माल को मैं क्या करूँ, मेरे इस घर के कोने में दीन का क्या काम हो सकता है, मेरी ये गाड़ी कहाँ दीन के रास्ते में चल सकती है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ताला वो सब चीजें वक्त के साथ साथ आपको खुद समझ आएंगी। ये जो हम चंद लोगों के हाथों में अपनी ज़कातें और अपना माल दे के फ्री हो जाते हैं ना, अब वो जाने और हम जाने, ये भी एक उम्मत मुस्लिम का सदमा। उम्मत मुस्लिमा जब अपने उरूज पे थी ना, तो कोई फर्क नहीं था कि अबू बकर है बस यही जिम्मेदार है, इस दुनिया में काम करने के बाकी नहीं है। एक एक शख्स अपने आप को जिम्मेदार समझता था। इसीलिए आप देखिए, जंगों में खुद भी जाते, जान भी लगाते, माल भी लगाते, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मुश्किल लगता है। बात तो सच है, लेकिन फिर भी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि हमें जिस रास्ते में लगाना है उस रास्ते की वैल्यू नहीं पता। इसलिए अब आगे आयतुल कुर्सी आ रही है। पहले अल्लाह ने मुझे और आपको हमारी बेसबाती बता दी कि तुमने चले जाना है। अब आगे बता रहा है कि जिसके रास्ते में तुम्हें माल इन्वेस्ट करने का हुक्म दिया जा रहा है, और देखो वो कितनी बड़ी पार्टी है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो जिंदा जावेद हस्ती जो तमाम कायनात को संभाले हुए है, इसके सिवा कोई जात नहीं। कौन सी? कि जो हमारे कामों को कर सके। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना वो सोता है ना इसे ऊंघ लगती है। जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है। कौन है जो इसकी जनाब में इसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके? जो कुछ बंदों के सामने है इसे भी वो जानता है, और जो कुछ इनसे ओझल है इससे भी वो वाकिफ है। इसकी मालूमात में कोई चीज इनकी गिरफ्त अदराक में आ ही नहीं सकती, इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही इनको देना चाहे। वसीअ कुर्सी युहुस समावाति वल अर्द, इसकी हुकूमत आसमानों और जमीन पर छाई हुई है, और इसकी निगहबानी उसके लिए थका देने वाला कोई काम नहीं, बस वही एक बुजुर्ग और बरतर हस्ती है। ये है वो आयत जिसको मैं और आप आयतुल कुर्सी कहते हैं। तवील तरीन तो नहीं है, लेकिन अजीम तरीन आयत है। 25 नाम और सिफात, यानी नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स अगर आप काउंट करेंगे, इस एक आयत में अल्लाह के 25 नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं। किसी वजह से भी शैतान इसकी आँच पकड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लेगा, तो मौत के सिवा कोई चीज उसको जन्नत में जाने से नहीं रोकेगी। जिस चीज पे पढ़ के रखे तो वहां अल्लाह ताला शैतान से उसको बचा दे। वजह क्या है? हम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनती, क्योंकि इसमें अल्लाह की सिफात पे गौर नहीं करते। वो रब मेरे लिए जागता है, मैं उसके लिए नहीं जाग सकती। जब सुबह उठना मुश्किल लगे तो इस बात को सोचिएगा कि अल्लाह तू तो सोता भी नहीं, तू तो मेरे काम करता है, तो मैं तेरे रास्तों में क्यों ना निकलूं? मेरा तो अपना वजूद भी कुछ नहीं। फिर इल्म की बात की, अल्लाह का इल्म कितना वसी है। पूरी दुनिया के लोगों का इल्म एक चूंच में डाल दिया जाए चींटी की, तो उसकी हैसियत अल्लाह के इल्म के आगे एक कतरे की है। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इसमें हम सबको अपनी खूबियां बताकर ये बता दिया कि जब तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कुछ करना पड़े या उसका मौका मिले तो ऑनर फील करो। किसी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाए तो लोग खुशी महसूस करते हैं। अब अल्लाह ने अपनी जात बताई और अल्लाह ताला की बड़ाई हम सब के दिलों में आ गई। अब कह दिया ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं, मतलब किसी को गन पॉइंट पर मुस्लिम नहीं किया जाएगा। आज तक हिस्ट्री में कोई एक वाकया भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी मुस्लिम रूलर ने किसी को जबरदस्ती मुसलमान किया। तो ये आयत दीन में आने के बाद नहीं है, दीन में लाने की बात है। बाज लोग कहते हैं नमाज पढ़ो, कहते हैं नहीं दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है जी, हम खुद पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। रोजा रखो भी नहीं, दीन में जबर नहीं है। तो जब दीन में आ गए तो फिर तो दीन को मानना पड़ेगा। देखिए आप किसी स्कूल में नहीं जाते तो उनकी कोई जबरदस्ती नहीं कि वो आपको कहे कि अपने बच्चे को लाएं और दाखिल करवाएं। लेकिन एक दफा जब आप वहां एडमिशन फॉर्म फिल कर लेते हैं तो फिर वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनके रूल्स को फॉलो करें। सेम ये बात है, जब कोई शख्स कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, जो हमने खुद नहीं कहा लेकिन अजान हमारे कानों में दिलवा दी गई, एक दफा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और एक दफा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसी दिन से इकरार तो कर चुके हैं। अब हम अंदर आने के बाद इस्लाम के कमरे के कहें क्या जरूरत है नमाजों की, क्या जरूरत है अल्लाह की बात को मानने की? तो ये हमारी नासमझी है। फरमाए क्यों जबरदस्ती नहीं? किसी काफिर को आप जबरदस्ती मुसलमान नहीं कर सकते। वजह क्या? कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, क्योंकि सही बात गलत बात से अलग कर दी गई। अल्लाह ने हर इंसान की फितरत के अंदर हक और बातिल का फर्क रख दिया। فرمایا وہ جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا حامی و مددگار ہے، وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو لوگ کفر کی رائے اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو انہیں روشنیوں سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات میں بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے یہ بات بتا دی کہ اللہ کا سہارا سب سے بڑا سہارا ہے۔ کسی بھی ملک میں رہیں تو اس کے قانون ماننے پڑتے ہیں، اسی طرح اس دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کے اس دنیا کے قانون ماننے پڑیں گے۔ جب آپ اور میں کسی ملک میں رہیں اور وہاں کے رولز فالو کریں تو لوگ کہتے ہیں کتنے مہذب شہری ہیں، ہم ایڈمائر کرتے ہیں کسی ادارے کے رولز کو فالو کرنے والوں کو، تو جب کوئی دین کے رولز کو فالو کرے تو ہم اس کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ مذہب ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی ذات انوالو ہے۔ مسلمانوں کو تو نماز زکوٰۃ پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، ادر وائز کافروں کو نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مضبوط کڑے کی بات ہوئی، یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے۔ جتنا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ جب ایک انسان کی زندگی کے اس دریا میں غم اور تکلیف کی اور مصیبتوں کی لہریں چلتی ہیں، اس وقت اگر ایک انسان اللہ کا سہارا پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تھام دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اب تین واقعات ہیں جو مختلف انبیاء کرام کے ساتھ ہوئے، جن سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو کچھ ایسے واقعات دکھاتا ہے تاکہ وہ بات ان کو یقین سے آئے۔ یا ایسی جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں یہ بات سنی ہے، کوئی کہے ہو سکتا ہے غلط ہو، اور اگر آپ کہہ دیں میں گئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو لوگ آپ کی بات کو مانیں گے نا۔ تو انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کچھ اس قسم کے واقعات سنا دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کے بارے میں بھی دیکھا، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ یہ نمرود تھا، اپنے دور کا بادشاہ۔ وجہ کیا تھی جھگڑنے کی؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ یعنی جب اللہ کسی کو دنیا کے چار پیسے یا عہدہ دے دیتا ہے تو وہ شخص اللہ ہی کے خلاف باتیں کرنے لگتا ہے۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، قال انا احیی و امیت، تو اس نے اس کا جواب دیا زندگی اور موت تو میرے بھی اختیار میں۔ یہ کیسے تھی؟ کہتے ہیں جیل میں سے ایک قیدی جس کو عمر قید کی سزا تھی اس کو نکال کے کہا جا تجھے آزاد کیا، اور اپنے ہی دربار میں بیٹھے ہوئے ایک بے گناہ شخص کو پکڑا اور کہا اس کو قتل کر دو، کا دیکھا میں بھی جس کو چاہوں زندہ کروں جس کو چاہوں مار دوں۔ صرف وہ اپنی بڑائی دکھانا چاہتا تھا نا، حالانکہ ابراہیم عقل مانتے الجھے نہیں۔ آج کے مسلمانوں کو دعویٰ میں اور غیر مسلموں تک دین کا پیغام پہنچانے میں یہ سٹائل اختیار کرنا جو ابراہیم کا تھا، الجھنا نہیں، جھگڑنا نہیں، برا نہیں کہنا، مردہ بات نہیں کہنا، کافر نہیں کہنا، جانمنی نہیں کہنا، بلکہ لاجیکلی ایک بات اس نے ذرا بے ڈھنگی سی جواب دیا کہ چلو چھوڑو، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِي بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو ذرا اس کو مغرب سے نکال دے۔ یہ تھی وہ بات جس میں فبوہی تلزی کفر، یہ سن کر وہ حق کو ماننے والا حیران رہ گیا۔ آج مسلمانوں کو اس انٹرلیکٹ کی ضرورت ہے، اور آج ہمارے بچے جو ویسٹ میں پلتے ہیں وہ بیسٹ طریقے سے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا آتا ہے، ان کو لینگویج پرابلم نہیں ہے، ان کے اندر کانفیڈنس ہے۔ ہم تو کسی کو انگلش بولتا دیکھے تو ویسے ہی مروب ہو کے بیٹھ جائیں گے، ہم تو کسی کو ذرا سوٹیڈ بوٹیڈ دیکھے تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کون ہے، خود جا کے دیکھ لو، ہم نہیں دیکھ پاتے۔ وجہ کیا؟ ہم مروب ہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو عمل کرتے ہوئے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت شروع سے لے کے 15 سال تک ہونے میں اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اسلام کی سچائی بیان کر دیں، پھر مجھے اور آپ کو نہیں کہنا پڑے گا۔ اس طرح سے وہ دنیا کو اسلام دیں گے کہ لوگ ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ آج جہاں لفظ تبلیغ آتا ہے یا اسلام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرنا، لوگوں کو پتہ لگے گا۔ دیکھیے جب مسلمان صحیح طریقے سے اپنا کام کرتے ہیں نا تو لوگ ان کا شکریہ بولتے ہیں۔ مثال دیتی ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نیبر میں لائٹ نہیں ہے، آپ اپنے گھر سے ایک لائٹ لیتے ہیں یا آپ کوئی بھی ایکسٹینشن کوڈ لے کے اس کا سوئچ اپنے گھر میں لگا کے جا کے وہ کوڈ ان کو دیتے ہیں، لیجیے آپ اس میں اپنے بلب کا بٹن لگا لیں، کیا وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ خوش ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نیبر میں لوگ بھوکے ہیں، آپ اپنے فریج سے کھانا نکالتے ہیں یا چولہے پہ کچھ بنایا گرم گرم کھانا پیش کرتے ہیں، خوش ہوں گے کہ ناراض؟ خوش ہوں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نیبر کے بیک یارڈ میں بہت سارے پتے بکھرے ہوئے ہیں، آپ اپنا جھاڑو لیتے ہیں جا کے اس کو صاف کرتے ہیں، خوش ہوں گے کہ ناراض؟ دینے والے تو ہمیشہ جیتتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جب آپ ان کے گھر میں بتی جلائیں تو وہ خوش ہوں، کھانا دے تو خوش ہوں، آپ ان کے بلب جلائیں تو وہ خوش ہوں، صفائی کریں تو خوش ہوں، तो क्या आप उनको इतना प्यारा इस्लाम जो आपको खुद पता होगा खूबसूरत है वो देंगे तो वो नाराज होंगे? हम उनसे कुछ लेने तो नहीं जा रहे। देखिए एक बात अल्लाह ने दिल में डाली, लेने वाला हमेशा नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है, ये तो मानते हैं ना। जब हम अपना कल्चर देंगे तो हमारा हाथ ऊपर होगा। इस वक्त उनको पता है ये हमसे ले रहे हैं, वो अंदर खाते खुश होते हैं हमें देख के, देखो ये तो कपड़े भी हमारे ही लेते हैं, ये तो इनको तो उस तरीके भी हमारे ही अच्छे लगते हैं, इनको तो शादियां भी हमारी अच्छी लगती हैं। तो जब हम उनसे लेने वाले बने तब उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमें अपने इस्लाम पे फख्र दें, वो फख्र जो अंदर बड़ाई ना पैदा करे बल्कि कॉन्फिडेंस पैदा करे। औकल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा, या फिर मिसाल के तौर पर उस शख्स को देखो जिसका गुजर एक ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतों पर ऊंधी गिरी पड़ी थी। इसने कहा यह आबादी जो हलाक हो चुकी है इसे अल्लाह किस तरह दोबारा जिंदगी बख्शेगा। इस पर अल्लाह ताला ने इसकी रूह कब्ज कर ली और वो 100 बरस तक मुर्दा पड़ा रहा। फिर अल्लाह ताला ने इसे दोबारा जिंदगी बख्शी और इससे पूछा बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो? इसने कहा एक दिन या चंद घंटे रहा हूँ। फरमाया तुम पर 100 बरस इसी हालत में गुजर चुके, अब जरा अपने खाने और पानी को देखो, इसमें जरा सी भी तब्दीली नहीं आई। दूसरी तरफ जरा अपने गधे की तरफ तो देखो, इसका पिंजर तक बोसीदा हो रहा है, और ये हमने इसलिए किया कि हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बनाना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पिंजर को हम किस तरह उठाकर गोश्त पोस इस पर चढ़ाते हैं। इसी तरह जब हकीकत इसके सामने बिल्कुल नुमाया हो गई तो इसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है। ये वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ पेश हुआ था, जिनके बारे में सूरह तौबा में आप पढ़ेंगे कि यहूद के गिरोह का अकीदा क्या है कि उज़ैर इब्नुल्लाह, जैसे नसारा ने हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा कहा तो यहूद का एक सेक्ट जो है वो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा कहता है। वजह क्या है? क्योंकि ये 100 साल मुर्दा रहे थे, फिर अल्लाह ने इनको जिंदा किया। वो बस्ती जिसका जिक्र अभी आपने पढ़ा ये बैतुल मक़दस की बस्ती थी, और उन्होंने दिल में सोचा कि ये बस्ती कैसे आबाद होगी, बिल्कुल खराब हो चुकी थी। अल्लाह ने उनको यकीन दिलाने के लिए मौत दी, वो फौत हुए। 100 साल के दौरान यहूद का रिवाइवल हुआ और अल्लाह ताला ने इनको दोबारा गलबा दिया। जब वो उठे तो वहाँ बहुत आबादी हो चुकी थी। अब वो तो थी हिस्ट्री, इस वाक्य को जरा आज मतवसत होने के नाते से देखिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने उस दौर में एक मुर्दा बस्ती की ईंटों को और उनकी जगहों को ठीक किया, क्या आज उम्मत मुस्लिमा की हालत को अल्लाह नहीं बदल सकता? आज अब मुसलमान भी तो बिखरे हुए ना, आज कई साहिब दर्द लोग हैं वो रोते हैं तड़पते हैं कि अल्लाह इस उम्मत को कुछ होगा। अपेरेंटली देखे तो आप कहते हैं हम कभी नहीं चेंज होंगे, इतनी डिसऑर्गेनाइज्ड उम्मत हो गई, इतनी गैर मुहज्जब, इतनी सफाई से दूर, जहां खाया छिलका फेंक दिया, जिसको जो दिल चाहा बात किया। नहीं 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 मुसलमान नहीं ठीक हो सकते। आज कुछ लोग ये सोच दे रहे हैं और मीडिया पे अल्लाह ताला हिदायत दे, ऐसे लोगों को बैन करने की जरूरत है जो मुसलमानों और पाकिस्तानियों के खिलाफ आके बातें करते हैं या किसी और मुल्क के मुसलमानों के खिलाफ, ये मुसलमानों का मोरल डाउन करते हैं। इस वाक्य को बेस बनाते हुए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तूने उस मुर्दा बस्ती को जिंदा किया और वो 100 साल फौत रहे, हम भी तो तकरीबन 300-400 साल से इस वक्त धक्के खा रहे हैं। ये मुसलमान जो इस वक्त 2000 में पहुंचे हुए हैं इन्होंने बहुत धक्के खा लिए, अल्लाह तो इसको जिंदा कर दे। जरूरत इस बात की है कि हम लोगों के सामने वो यकीन पेश करें, वो हक पेश करें, इस्लाम के वो चलते फिरते अमली नमूने बनकर दिखाएं। तो आप देखिए कि जैसे अल्लाह ने यहाँ मुर्दा हड्डियों को जोड़कर दोबारा जोड़ दिया, क्या अल्लाह के लिए इस उम्मत को जोड़ना मुश्किल है? ये सब होगा, इंशाल्लाह होगा, और कितनी खुशी की बात है कि वो आपके मेरे हाथों से हो, वो हमारे बच्चों के हाथों से हो। आज की माँ अपने बच्चे को ये लोरियां दे, आज आप अपने बच्चों के बालों में हाथ फेरे तो मेरा बेटा, मेरा प्यारा बच्चा, तू है जिसने इस दुनिया में अल्लाह का पैगाम देना। मसला पता है कि जब आप कहेंगे ना अल्लाह का पैगाम देना तो बच्चा कहेगा अम्मी का इशारा है कि बेटा तूने दाढ़ी रखनी है और बेटा तूने शलवार टखनों से ऊंची करनी है, वहीं घबरा जाते हैं। अच्छा बेटा फीस भी लाला कुछ करो, अच्छा जिसका था डोनेशन बॉक्स पकड़ के खड़े हो जाओ, आते जातों को दू। ये मिसकॉन्सेप्शन है, ये दुख के साथ कहती हूँ बातें, खुशी की तो नहीं है, मेरा अंदर से दिल पिघलता है जब ये चंद लफ्ज बोलती हूँ, लेकिन जरूरत है बोलने की। कि आज हम जब अपने बच्चों को कहेंगे ना घर जाके बेटा इस्लाम के लिए कुछ करो तो वो यही सोचेंगे, आज इस्लाम के लिए काम करना कोई बात नहीं। वरना आप देखिए, मैंने खुद देखा है बच्चों को स्कूलों में वॉलंटियर करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, वो पत्ते उठाते हैं, वो कुकीज बना बना के बेच के वो सेल्स में पैसे स्कूलों को देते हैं। क्या समझते हैं कि आप हमारी यूथ में कोई जज्बा नहीं है? सब है, हमने उनको ऑनर नहीं दी। वो उनके स्कूलों के लिए जाके बाथरूम में धो दें, वॉलंटियर्स कर लें, कैश रजिस्टर्स पे खड़े हो जाएं सारा दिन, वो फख्र करें। जब आप उनको इस्लाम की बात करें कि बोरिंग। रात मैंने एक दर्द बहुत ही शिद्दत से महसूस किया, मस्जिद थी, और ये आप मेरे से अब दर्द सुनते ही रहेंगे। ये जब भी मैं पब्लिक प्लेसेस पे जाती हूँ तो मेरा हाल ये है, और मैं सोचती हूँ कि मैं ना ही जाऊँ तो अच्छा है, मैं मस्जिदों में क्यों जाए, घर में और घर से क्लास और क्लास से घर हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। रात को हम मस्जिद में गए, इतनी अच्छी माशाल्लाह तरीके से उन्होंने तरावी पढ़ाई। तरावी से पहले उन्होंने पारे का थोड़ा सा थीम बताया इंग्लिश में चंद जुमलों में कि आज का पारा ये होगा। फिर उसके बाद उन्होंने तरावी के बाद लेक्चर शुरू किया। जब 8 तरावी होती है बहुत सारे लोग निकलते हैं और उसके बाद वो शुरू हो गए। यानी जो चीज़ मैंने बाहर आके देखी, नो वन वॉज लिसनिंग। हमारी सारी यूथ, लड़के बाहर हैं सड़कों पे खेल रहे हैं, औरतें बाहर खड़े होकर बातें करी। जूं ही मौलवी साहब ने लेक्चर शुरू किया, मस्जिद से लोग यूं निकले कि जैसे आप कह लें कि मशक का पानी खाली हो तो निकलने लगे। मैं सोचूं कि अगर मेरे साथ अब आप करें ना ऐसे कि मैं पढ़ा रही हूं और आप उठ के अपने बस्ते समेट के जाएं, तो मैं फौरन कहूं कि टाइम हो गया, खुदा हाफिज, मैं जा रही हूं, आई कैंट से एनीथिंग। वो बेचारे बोल रहे थे, मस्जिद में लोग बातें कर रहे। मेरा दिल टूटा, मैंने कहा ला अभी ही पारा सुन के उठे हैं और इसी की बात जब वो बेचारा मौलवी आपको बता रहा है कि कुछ, और इंग्लिश में बता रहे थे। चलो हम सोचते हैं कि उर्दू नहीं आती हमारी यूथ को इसलिए नहीं आते, तो मैंने तो इंग्लिश में भी नहीं लोगों को सुनते देखा। मैंने इतना तड़पी, इतना मेरा दिल टूटा कि अल्लाह ये मुसलमानों बच्चों को, और बच्चे छोड़िए बड़े भी, मर्द भी बाहर खड़े हैं जूतों में बातें कर रहे थे। मौलवी साहब, और उनका ख्याल था ये मौलवी साहब आदत के मुताबिक बोल रहे हैं, सिर्फ वो लोग मस्जिद में उनके सामने बैठे होंगे जिन्होंने 20 तरावी पढ़नी थी। बहुत दुख हुआ मुझे, आज हमारी उम्मत क्यों इतनी सर्द हो गई, कोल्ड, ठंडे, ऐसे लगता है बर्फ की सिल को हाथ लग गया। इस किताब से ना गर्मी ना जुश उनको नहीं फील हुआ कि ये आदम का किस्सा क्या है, ये इबलीस का क्या है। और मैंने जो बातें आपको 2 दिन पहले बताई हुई थी वो सारी याद आ रही थी, जब तिरावी हो रही थी तो वो सारी बातें अपने सामने थी, तो मैं अल्लाह का इस पे शुक्र करके रो रही थी कि अल्लाह मुझे समझ आ रहा है। तो लोगों को शौक क्यों नहीं है, क्योंकि हमने दीन अपना इतना बोझल हो गया। और वो बहुत अच्छा बता रहे थे, ये भी मत कहें कि वो पाकिस्तान से आए हुए बेचारे मौलवी साहब थे जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं। इस वक्त ये आप और मैं काम करेंगे, जो माँ की गोद की गर्मी होती है ना वो अल्लाह की मोहब्बत की गर्मी देती है। आपने इस किताब से मोहब्बत देनी है, आपने लोरियां सुनानी है, आपने बकरा और आले इमरान और सूरत निसा और मायदा, आपने इनका शौक पैदा करना है, आपने अपने बच्चों को देना है नबी से मोहब्बत करना सिखाना है। वरना याद रखिए हमारी नस्लें ठंडी हो गई। मैं नहीं कहती बुरी हैं, लेकिन वही बात है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी नस्लों की सही तरबियत की तौफीक दे। और इससे पहले किसकी तरबियत करने की जरूरत है, अपनी करेंगे। असल मसला ये है कि जब हमारे बच्चे हमें पूछेंगे कि मम्मी मुझे तो कह रही है व्हाट्स अबाउट यू, फिर वहां सारे क्वेश्चन, फिर हम कहते हैं ना इनको छेड़ो ना बात सुनो, चुपके से बैठे रहो, थोड़ा सा सदका और दे दूंगी, थोड़ा एक उम्रा और कराएंगे, हालत नहीं बदलेगी। इतनी मुझे तो ऐसे लगता है वो सारे सालों का दर्द इस साल के दौरे कुरान में जा रहा है, क्योंकि मौजू ये है। हर तबलीग का, हर खुलासे का आखिरी एंड आज के मुसलमान का ये होना चाहिए कि हम कैसे उभरे, इस्लाम का सूरज कैसे उभरे। क्या हम गुलामी में मर जाएंगे? क्या हमने नहीं सोचा कि कभी लोग हमारे मुल्कों का नाम लेके कहें उधर का वीजा कैसे मिलेगा, हाय उधर कैसे जाएंगे, हाय मुझे एक दफा उधर जाना है, मुझे विजिट करना है। पंजों पे, उंगलियों के बल पे मुछल रहे हैं हमारे मुल्कों के लोग बाहर के मुल्कों में आने के लिए, एक झूठे पासपोर्ट बना के या एक कार्ड लेने के लिए या एक पासपोर्ट लेने के लिए सारा घर बेच के आने को तैयार है, बीवियों के जेवर बेच के आते हैं। 10-10, 20-20 साल से कुछ लोग इन मुल्कों में आके बैठे हैं, वापस नहीं जा रहे। माँ मर गई नहीं गए, बाप मर गया नहीं गए, रिश्तेदार मर गए नहीं गए, क्योंकि चले गए तो पेपर वर्क रुक जाएगा, फिर आ नहीं सकेंगे। इतनी इज्जत है आज हमारे दिलों में इनकी, क्या ये इज्जत मुसलमान मुल्कों की नहीं हो सकती? अगर इन मुल्कों की तो इसकी रीजन समझ आती है, ये रीजन आप पर मैं पैदा करें। आप कहेंगे तो बड़ी बात है, तो फिर छोटे से घर से शुरू करें। नुक्ता आगाज मेरे और आपके घर से है, नुक्ता आगाज मेरी जात से, मेरे बच्चों से। आप कहते शौहर नहीं मानते तो कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों को तो मनवा लीजिए। तो दुआ कीजिए कि आज हम इस सोच को देखें कि हमारे दिल में ये तड़प हो कि अल्लाह इस मुर्दा बस्ती को जिंदा करे। आज दिल की बस्ती भी वीरान है, आज इस्लाम की बस्ती वीरान है, आज कुरान वीरान लगता है, आज मस्जिदें वीरान लगती हैं। जब मस्जिदें रमजान में भरती हैं, इर्द गिर्द के शहरी भी देख के कहते होंगे पता नहीं क्या हो गया, उनको भी पता चल गया कि वी आर मुस्लिम ऑफ रमदान, वी आर रमदानी मुस्लिम। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी आंखें खोल दे, नहीं हालत बदलेगी। हम ये बातें करके जा सकते हैं, अभी तो तीसरा पारा आधा हो चुका होता, लेकिन हालत नहीं बदलेगी। ये वो गुर हैं जिसने पारा पूरा हुआ ना हुआ, लेकिन ये याद रखिए कि गलबा इस्लाम का दिस इज द ओनली वे जो मैंने सीखा अभी तक, नो शॉर्टकट। कोई हमारे पास ऐसा कोई वजीफा नहीं है कि सारी उम्मत बैठ के पढ़े तो मुसलमानों को इज्जत मिल जाए। हमारे पास कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि जिसके रास्ते से हम गुजर के कुछ रिचुअल्स को अदा करें और कल सारी दुनिया में मुसलमान बाइज्जत हो, ये नहीं है। ओनली वे यही सहाबा की जिंदगी से सीखेंगे आप। आगे आगे चलते जाएंगे, आपको सहाबा की कहानियां मिलेंगी, फिर आप खुद देखेंगे। तो दुआ कीजिए कि आज भूले हुए सबक आज याद आ जाए। ये आज बिखरी हुई उम्मत कि जिसको कितने हम एक भेड़ों के रेवड़ की तरह इधर से उधर चाहता देख रहे हैं, एमलेस वॉन्डर ब्लाइंडली। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को सबसे पहले इसमें पेश करें। अब एक और वाकया है हजरत इब्राहिम का, अल्लाह ताला ने उसको भी हमारे सामने रख दिया। वइज़ क़ाला इब्राहिम, और रब्बी अरिनी कैफ़ तुहयिल मौता, और वो वाकया भी पेश नजर रहे जब इब्राहिम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया, क्या तू ईमान नहीं रखता? क्या मतलब ये सवाल? इसलिए कि इब्राहिम के दिल में ख्याल आ गया था कि अल्लाह इस बात पे कादिर नहीं है कि मुर्दा जिंदे हो, तो ऐसा नहीं है। याद रखिए कि अल्लाह ताला अंबिया कराम को ईमान और फेथ की भट्टी बनाना चाहते हैं, फर्नेस बनाना चाहते हैं, क्योंकि जब उनके अंदर ईमान होगा तो दूसरों को देंगे। बात करने वाले के अंदर दर्द नहीं है, दूसरों को कैसे देगा? बात करने वाले के अंदर ईमान नहीं है, दूसरों को कैसे देगा? तो लिहाजा अल्लाह ताला इब्राहिम अलैहिस्सलाम की यहाँ ये बात कि क्या तुझे ईमान नहीं है, इसको इसलिए ला रहे हैं कि ईमान था, लेकिन वो देखना चाहते थे कि किस तरह अल्लाह ताला नामुमकिन को मुमकिन में बदलता है। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह ताला ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया, अच्छा तो चार परिंदे ले लो और इनको अपने से मानूस कर लो, फिर इनका एक एक जुज एक एक पहाड़ पर रख दो, फिर इनको पुकारो वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान लो कि अल्लाह नहायत बा इकतदार और हकीम है। क्या पता चला कि अल्लाह ताला पैगाम कैसे फैला देता है। मुर्दा परिंदे जिंदा हो गए, इब्राहिम ने जब खड़े होकर आवाजें लगाई वो उठ के चल पड़े। इसी तरह से याद रखिए, जब मुसलमान हकीकत में सच्चे हो जाएंगे, संजीदा हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला मुर्दा बस्तियों की तरह मुर्दों कौमों को भी जिंदा करेगा। और अल्लाह ताला वो ईमान आपके और मेरे अंदर भर दे कि जिसकी हरारत से हमारे इर्द गिर्द वाले पिघल जाए, जिन गलियों से हम गुजरे वहां ईमान आ जाए, वहां से इस्लाम आ जाए। वरना याद रखिए, आज तारीखियों में जीने वाले कल तारीख तरीन प्लेस यानी जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे। हमें तड़पना चाहिए, जहां एक तरफ हमें इस्लाम को फैलाने का दर्द पैदा करना है ना, इसी तरह कुफर के साथ मुंसलिक लोगों से हमदर्दी की भी जरूरत है। हाय ऐसे मर जाएंगे, हाँ इनके नसीब में जहन्नुम के अंधेरे हैं, उसके लिए फिर आज और मुझे आपको फिक्र करना होगा। ये तीन वाकियात है, अंबिया कराम बहसों में नहीं उलझे। पहले वाक्य में हमने इब्राहिम का इल्मी जिहाद देखा, इल्म की बुनियाद पे नमरूद के साथ मामला किया, आज इसकी जरूरत है। मुखालिफ दलाइल से हारते हैं, कायल हो गया मगर तायब नहीं हुआ नमरूद। वजह क्या कि दिल में बड़ाई बैठी हुई थी, तो जब अल्लाह ताला किसी से कोई काम लेना चाहता है तो इसी तरह लेता है। फिर दोबारा ये दो वाक्यात आप समझ गए कि आयतुल कुर्सी के बाद ये वाक्यात क्यों आए, ताकि लोगों को अल्लाह की कदर आ जाए कि अल्लाह कौन है। अब आगे यहां से माल की बातें हैं।